नमस्कार भारत, 16 जुलाई सोमवार, मैं हूं आदर्श राठौर। फीफा विश्व कप के फाइनल के रोमांचक मुकाबले में क्रोएशिया को हराकर 20 साल बाद चैंपियन बना फ्रांस। भारत की राजधानी दिल्ली के एक थाने में नाबालिग लड़की की कथित खुदकुशी को लेकर पुलिस पर उठे सवाल।
पब्लिक को बाहर करने में, गेट तक ले जाने में काफी 5-10 मिनट लगा, उस दौरान लड़की अकेली रह गई।
वसतुल्लाह खान की डायरी में जानेंगे पाकिस्तान में हो रहे चुनाव को लेकर क्या है माहौल।
इस बार सिवाय इमरान खान के हर कोई चीख रहा है कि 25 जुलाई को इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होने जा रहा है।
होगी अखबारों की समीक्षा और खबरें और भी, लेकिन पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से। वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल मुकाबला फ्रांस ने जीत लिया है। फ्रांस ने एक रोमांचक मुकाबले में क्रोएशिया को 4-2 से हराया। ये 1998 के बाद दूसरा मौका है जब फ्रांस की टीम ने वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का करिश्मा दिखाया है। क्रोएशिया टीम पहली बार फाइनल में पहुंच पाई थी, लेकिन टीम के खिलाड़ी कई अहम मौकों पर चूकते रहे। हाफ टाइम तक स्कोर 2-1 था, जिसके बाद मुकाबले के 59वें मिनट में पॉल पोगबा ने फ्रांस की ओर से गोल कर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसके बाद 65वें मिनट में केलियन एम्बापे ने चौथा गोल दागकर क्रोएशिया की उम्मीदों को झटका दे दिया। 19 साल के एम्बापे पेले के बाद पहले टीनेजर खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में स्कोर किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज फिनलैंड में बैठक होने जा रही है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि उन्हें इस मुलाकात से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। अमरीकी टीवी नेटवर्क CBS से बातचीत में ट्रंप ने कहा है कि पुतिन से मुलाकात होने पर कुछ बुरा नहीं होगा और हो सकता है कि शायद कुछ अच्छा ही हो जाए। उनका कहना है कि वो साल 2016 के अमरीकी चुनाव के दौरान कथित रूप से हैकिंग में शामिल 12 रूसी लोगों की बात उठाएंगे। मुलाकात करना अच्छी बात है, मैं मुलाकात करने में विश्वास करता हूं। जैसे मुझे भरोसा था कि किम जोंग उन से मिलना अच्छा रहेगा, जैसे चीन के राष्ट्रपति से मिलना अच्छा था, हालांकि मैं बहुत कम उम्मीद के साथ जा रहा हूं। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की राजनीतिक पार्टी के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत आपराधिक मामला शुरू किया गया है। ये आरोप शुक्रवार को लाहौर में आयोजित की गई एक राजनीतिक रैली को लेकर लगाए गए हैं। यह रैली नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने को लेकर किसी भी तरह के प्रदर्शनों पर लगे प्रतिबंध के बावजूद आयोजित की गई थी। इराक में लोग नौकरी और बेहतर सुविधाओं के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन पिछले एक हफ्ते से चल रहे हैं। दक्षिण इराक के शहर बसरा में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हवा में फायर किए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने शहर की मुख्य सरकारी इमारत को कब्जे में लेने की कोशिश की। दक्षिण इराक के बाकी शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री हैदर अल अबदी ने घोषणा की है कि पानी, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए फंड दिया जाएगा। यूरोपीय संघ ने कई बार अमेरिका को याचिका दी कि ईरान के मामले में जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, यूरोपीय संघ को उसका हिस्सा ना बनाया जाए, लेकिन आखिरकार अमेरिका ने याचिका को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपने जवाब में यूरोपीय संघ के देशों को लिखा है कि ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने के लिए ये जरूरी है। यूरोपीय संघ को डर है कि अमरीका के नए प्रतिबंधों की वजह से खरबों रुपये के व्यापार को नुकसान होगा। एक काले व्यक्ति की पुलिस फायरिंग में मौत हो जाने के बाद अमेरिका के शिकागो शहर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 37 साल के हैरिथ अगस्टस को पुलिस अफसरों के बीच हुई बहस की एक वीडियो फुटेज भी पुलिस ने जारी की है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अगस्टस ने पुलिस की कमर पर बंधी बंदूक को झपटने की कोशिश की थी। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ये घटना एक रंग भेद का मामला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिकागो के SP AD जॉनसन ने लोगों को वीडियो देखने की अपील की। जो है वो यही है, हम कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे। वीडियो खुद सब कुछ बयां कर रही है, आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि क्या हुआ था। शिकागो के SP एडी जॉनसन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। एक कॉन्सर्ट के दौरान पुरुष गायक को गले लगाने के लिए दौड़ी एक महिला को सऊदी अरब में गिरफ्तार कर लिया गया है। गायक माजिद अल मोहंदिस पश्चिमी शहर ताइफ में एक समारोह में गाना गा रहे थे, तभी वो महिला मंच पर दौड़ती हुई चली गई। ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो में वो मोहंदिस को पकड़े हुए नजर आ रही हैं, जबकि सुरक्षाकर्मी उन्हें खींचने की कोशिश कर रहे हैं। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। रूस में एक महीने तक चला फीफा विश्व कप 2018 टूर्नामेंट कल बेहद रोमांचक फाइनल के साथ खत्म हुआ। 1998 में वर्ल्ड चैंपियन रहे फ्रांस ने 20 साल बाद फिर इतिहास रचा और क्रोएशिया को 4-2 से हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। क्रोएशिया की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची थी मगर उसका सपना पूरा नहीं हो सका। कल के इस रोमांचक मैच का हाल सुना रहे हैं हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त।
आखिरकार पूरे एक महीने तक पूरी दुनिया पर छाए रहने के बाद कल फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2018 का समापन फ्रांस की खिताबी जीत के साथ हुआ। दर्शकों से खचाखच भरे मॉस्को के लुझ्निकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। ये फ्रांस की दूसरी खिताबी जीत रही। वैसे इस महा मुकाबले में फ्रांस की किस्मत ने भी उसका साथ दिया क्योंकि खेल के 18वें मिनट में ही क्रोएशिया के मारियो मर्जुकिच खुद अपनी ही टीम पर आत्मघाती गोल कर बैठे, लेकिन उसके 10 मिनट बाद ही क्रोएशिया के पेरिसिच ने गोल कर अपनी टीम को 1-1 की बराबरी दिला दी। लेकिन मैच में अभी और भी तमाशा होना बाकी था। इन्हीं पेरिसिच ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। 38वें मिनट पे फ्रांस के एक अटैक पर पेरिसिच का हाथ बॉल पर लगा, नतीजे में फ्रांस को पेनल्टी मिली जिसे गोल में बदलने में ग्रिज़मन ने देर नहीं की। 2-1 की बढ़त के बाद फ्रांस के पोग्बा ने भी खेल के 59वें मिनट में गोल कर स्कोर 3-1 कर दिया। फुटबॉल में ऐसी बढ़त निर्णायक हो जाती है, लेकिन इसे 4-1 किया एम्बापे ने। वो दुनिया के सबसे तेज गति से दौड़ने वाले फुटबॉलर में से एक हैं, लेकिन जो झारू क्रोएशिया ने ठीक 3 मिनट बाद मैंडजुकिच के गोल की बदौलत स्कोर 4-2 किया और थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन इसी स्कोर के साथ फ्रांस चैंपियन बनने में कामयाब रहा। इसके बाद पुरस्कार वितरण के समय मॉस्को का स्टेडियम तेज बारिश से नहा उठा। शायद आसमान भी रूस को कामयाब मेजबानी की बधाई दे रहा था। फ्रांस की ये दूसरी खिताबी जीत उसके लिए एफिल टावर जैसी रही और बारिश क्रोएशियाई खिलाड़ियों के आंसुओं को छिपा ले गई।
फुटबॉल विश्व कप फाइनल के महामुकाबले में फ्रांस की क्रोएशिया पर जीत के बाद हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने फुटबॉल समीक्षक गौस मोहम्मद से जानना चाहा कि उनकी नज़र में ये फाइनल और ये पूरा विश्व कप टूर्नामेंट कैसा रहा।
बहुत जबरदस्त रहा। उस क्रोएशिया जो 3 बार अतिरिक्त समय तक गई है, जो लोग बोल रहे थे, एक्सपर्ट बोल रहे थे, शायद थक गई होगी। मेरे ख्याल से जो पोग्बा एम्बापे ने जो स्पीड दिखाई है, ग्रिज़मैन सबसे बेहतर खिलाड़ी जो खेले हैं उनके ग्रिज़मैन, तो उन्होंने इतनी मेहनत करके प्रेरित किया एम्बापे, और पोग्बा ने भी जो गोल किया सीधे से मिस करके जो बाएं से प्लेसिंग करके गोल किया था वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो यहाँ कह सकते हैं कि फ्रांस ने आउटप्लेड करके फाइनल जीता है।
और आपको लगता है कि क्रोएशिया के खिलाड़ियों ने काफी गलतियां की, जैसे खुद ही गोल कर लिया और उसके बाद हाथ लगा जिसकी वजह से पेनल्टी मिली, यानी क्रोएशिया बदकिस्मत भी रहा।
जो वो ओन गोल वाली बात आप कर रहे हैं उसके अंदर क्या है कि बहुत ऊंची हाइट पे वो बॉल थी, डिफेंडर उसको हेड करने के लिए गए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो हेड जो है आप बचाने के लिए कर रहे होते हैं लेकिन वो बिल्कुल नजदीक होता है और वो उनसे हल्की सी डिफ्लेक्ट हुई और गोलकीपर डिफ्लेक्शन को ये नहीं सोच पाए, क्योंकि वो फॉरवर्ड से तो सजग रहते हैं कि यहाँ से हेड आएगा तो मैं ये करूंगा, लेकिन जब अपने ही खिलाड़ी से हेड लग जाता है उसको एंटिसिपेट करना थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है। और जो पेनल्टी कंसीड की वो प्रेशर जो फ्रांस का एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया था उसकी वजह से प्रेशर की, और आज के खेल के अंदर जो गलतियां क्रोएशिया ने की है वो गलतियां करने पे मजबूर किया फ्रांस की एक्स्ट्राऑर्डिनरी रणनीति से।
आपकी नजर में कुल मिलाकर ये पूरा टूर्नामेंट कितना कामयाब रहा।
देखिए ये टूर्नामेंट हर लिहाज से किसी भी अन्य टूर्नामेंटों से भिन्न था। यहाँ पे ये साबित हो गया कि आप एक खिलाड़ी पर, चाहे वो मेसी हो, रोनाल्डो हो, एक खिलाड़ी पे मैच नहीं जीत सकते। आपने नेमार को देखा एक्सपोज हो गए। ये टूर्नामेंट जो था फिटेस्ट खिलाड़ियों के लिए था, अनफिट खिलाड़ियों के लिए कुछ जगह नहीं थी। अर्जेंटीना और पुर्तगाल ये बाकी की टीमें जो हारी हैं उनमें सिर्फ एक ब्राजील ऐसी टीम थी जिसमें दम था विश्व कप जीतने का। रेपुटेशन पे खिलाड़ी कोई नहीं जीत सकता। बेल्जियम खेली यूनिट की तरह, वो जीतती रही। क्रोएशिया फाइनल में पहुंची, फ्रांस के अंदर डेप्थ थी, हर पोजीशन पे डेप्थ थी, युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण था। और आप देखिए इंग्लैंड की टीम में जितनी जान थी उतना वो सेमीफाइनल तक पहुंच गए। तो कहने का तात्पर्य ये रहा कि ये विश्व कप हर लिहाज से जबरदस्त रहा। और यहाँ पर जो फेयर प्ले के जो अंक मिलते थे, जापान की एशियाई टीमों ने भी यहाँ पे काफी प्रभावित किया।
फुटबॉल समीक्षक गौस मोहम्मद को आप सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे कि फुटबॉल वर्ल्ड कप कैसा रहा। रुख करते हैं भारत का। राजधानी दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में रविवार तड़के एक नाबालिग लड़की की कथित खुदकुशी को लेकर दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी वेस्ट विजय कुमार के मुताबिक इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और स्टेशन प्रभारी समेत 2 लोग लाइन हाजिर किए गए हैं। मामले की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये मामला है क्या? पूरी रिपोर्ट सुनिए बीबीसी संवाददाता वात्सल्य राय से।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये मामला तिलक विहार पुलिस स्टेशन क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की और उसके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के रिश्तों से जुड़ा है। इस रिश्ते को लेकर दोनों परिवारों के बीच शनिवार रात झगड़ा हुआ और मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर खुदकुशी करने वाली लड़की का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन उनकी मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लड़की की मां को शिकायत पड़ोस के परिवार से है, लेकिन इस घटना को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर है। पुलिस अधिकारी भी मान रहे हैं कि इन सवालों में दम है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी वेस्ट विजय कुमार:
पुलिस की नेग्लिजेंस है कि लेडी कांस्टेबल भी थी वहाँ मौजूद, लेकिन जब इतने सारे लोगों को बाहर निकाल देते तो ऑल ऑफ स्टाफ जो 4 ही थे टोटल, दे केम आउट ऑफ द रूम और पब्लिक को बाहर करने लग गए। और पब्लिक को बाहर करने में, गेट तक ले जाने में काफी 5-10 मिनट लगा। उस दौरान लड़की अकेली रह गई। होल एपिसोड विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। वी हैव डन आवर ऑर्डर्ड विजिलेंस इंक्वायरी। उसमें प्राइम ऑफिशियल जो स्टाफ था उसका थोड़ा ये है कि दे डिडंट हैंडल द मैटर प्रॉपरली, दैट्स व्हाई 2 ऑफ देम आर सेंट टू लाइन एंड 2 आर सस्पेंडेड।
कथित तौर पर खुदकुशी करने वाली लड़की का परिवार भी पुलिस पर आरोप लगा रहा है। लड़की के मौसेरे भाई से बीबीसी ने बात की तो उन्होंने अपना शिकवा कुछ इस तरह बयान किया।
लड़का है ना जो वो छेड़ता था हमारी बहन को, फिर शादी का दबाव डाल रखा था उसमें, थोड़ी बहुत आता भाई होगी थी लड़के के बाप के साथ कल रात 10:30, फिर उन्होंने हमारी बहन को किडनैप कर लिया था। लड़ाई में पता नहीं कहाँ भगा दिया था उसको, तो हम उसको ढूंढने लग गए। हम जाके कम्प्लेन लिखा दी कि हमारी नाबालिग सिस्टर है 16 साल की, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। पुलिस वाले हमारे लिए सुन रहे थे तिलक विहार चौकी वाले, ये वो, तो तिलक विहार चौकी वाले ने बोला कि अब इसके भाई बन रहे हैं। तो फिर लड़के का जो माता था उसने भड़काया लड़की को, और लड़के का जो बाप था उसने उसको बार बार टॉर्चर किया कि हमारी तरफ खिलाफ बोल, हमारे खिलाफ बोल।
उधर डीसीपी विजय कुमार ने भी घटना का पूरा ब्यौरा साझा किया।
पुलिस वहां पहुंची तो दोनों फैमिली के कुछ लोगों को माइनर चोट थी जिनको पीसीआर हॉस्पिटल ले गई, लड़की और लड़का वहां नहीं मिले। उसके बाद पुलिस फैमिली को पुलिस स्टेशन में ले आते हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं तो आपस में सुलह कर लेते हैं। लेकिन 250 पे लड़की आ जाती है, वो आके बयान देती है कि झगड़े में जब मैं डर गई थी, मुझे मेरी मम्मी और भाई ने मुझे भी थप्पड़ मारा था, तो मैं फतेहनगर गुरुद्वारा चली गई थी, वहां से मैं आई हूँ और मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। उसको नारी निकेतन भेजने की तैयारी की गई। लड़की आई थी तब भी ठीक था, बट एक इनका लड़के साइड से एक कमल करके कोई मौसा लगता है लड़के का, वो आया। वो आने के बाद फिर से तू तड़ाक ज्यादा हो गई, धक्का मुक्की होगी, कमोशन हुआ। पुलिस वाले सबको चौकी से बाहर करने का एफर्ट कर रहे थे, उसी समय लड़की को मौका मिल गया और उसने दरवाजा अंदर से बंद किया जिसमें वो बैठी थी, और उसको छटकने लगा के फटाफट सुसाइड कर लिया।
पुलिस अधिकारी अब खुद को मुस्तैद दिखाते हुए लापरवाही की भरपाई की कोशिश में है। जाँच इस सवाल की हो रही है कि क्या खुदकुशी को रोका जा सकता था, लेकिन इस बीच लगातार आंसू बहाती लड़की की मां का सवाल है कि क्या उसे इंसाफ मिलेगा। वात्सल्य राय, बीबीसी दिल्ली।
भारत और पाकिस्तान के बीच अभी जो रिश्ते हैं वो काफी तल्ख हैं, लेकिन साल 2008 में दोनों देशों की ओर से शुरू किया गया क्रॉस एलओसी ट्रेड अपनी रफ्तार के साथ 10 साल बाद भी जारी है। इस व्यापार के साथ आम लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। इस पूरे व्यापार से जुड़े लोग इतने सालों बाद क्या सोचते हैं, जानने के लिए सुनिए माजिद जहांगीर की ये रिपोर्ट।
हॉर्न की ये आवाज़ें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से आ रहे ट्रक की हैं। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से आने वाले कई ट्रक उड़ी के सलामाबाद ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे और ये ट्रक मेन गेट के अंदर दाखिल हो रहे थे। इम्तियाज बीते 6 वर्षों से ट्रेड सेंटर पर आते हैं और यहाँ मजदूरी करते हैं। वो कहते हैं कि इस ट्रेड सेंटर के खुलने से उनकी जिंदगी पर ये फर्क पड़ा कि उन्हें रोजगार मिल गया।
पहले यहाँ पे काम का ही थोड़ा कम ही था सर, यहाँ ट्रेड चलने से काफी काम बढ़ गया।
यहाँ मजदूरों के मेट मोहम्मद यूनुस 20 साल पहले के समय को याद करते हुए कहते हैं, जब इस जगह पर सिर्फ बारूद के गोले गिरते थे।
सबसे ज्यादा तो हम बाहर वाले लोगों को फायदा हुआ इसका, क्योंकि यहाँ शिलिंग होती थी बहुत जबरदस्त, उसके हम बहुत नुकसान उठाते थे, उसकी वजह से भी हमें थोड़ा यहाँ शांति हुई।
वर्ष 2008 में भारत पाकिस्तान ने LOC ट्रेड शुरू किया था। यह ट्रेड दो देशों के बीच CBM या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर उठाया गया एक कदम था। हफ्ते में 4 दिन आर पार का यह ट्रेड चलता है। भारत प्रशासित कश्मीर के सलाम आबाद और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के चकोटी के बीच एक तरफ ट्रेड होता है और उधर जम्मू पुनुष चक्कादी बाग रावला कोट रोड से माल को लाया और लिया जाता है। इस ट्रेड के साथ जुड़े व्यापारियों के लिए ये न सिर्फ व्यापार का एक सफर है, बल्कि व्यापार के साथ साथ इस तिजारत में आम लोगों की भावनाएं भी आर पार सफर करती हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में आर पार व्यापार के अध्यक्ष हिलाल तुर्की कहते हैं,
आज की डेट में अगर आप देखें कि यहाँ से जो पैसेंजर जाता है, जो पैसेंजर वहाँ से आ जाता है, बेसिकली एक ट्रेड एक लिंकेज थी दो डिवाइडेड फैमिलियों को मिलाने की, बहुत सारी फैमिलियाँ ऐसे जुड़ गई है इसके साथ।
हिलाल तुर्की कहते हैं कि इस व्यापार को बेहतर ढंग से चलाने के लिए सरकारी सत्ता पर अभी कई कमियाँ हैं। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि वो आने वाले दिनों में इस व्यापार को और भी अच्छे अंदाज से चलाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उड़ी के SDM और सलामाबाद ट्रेड सेंटर के कस्टोडियन बसीरुल हक चौधरी कहते हैं,
तो कस्टोडियन भी जो है अपने लेवल पे ऑफिस में जो है इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको डिजिटलाइज किया जाए, इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए।
सलामाबाद ट्रेड सेंटर के कस्टोडियन बसीरुल हक चौधरी के मुताबिक बीते 10 वर्षों में अभी तक आर पार के इस तिजारत से 5200 करोड़ का व्यापार किया जा चुका है। इन 10 वर्षों में इस व्यापार के रास्ते में कई चुनौतियां तो आईं, लेकिन ट्रकों के पहिए रुके नहीं और हॉर्न भी बज रहे हैं। माजिद जहांगीर, BBC, सलामाबाद, उड़ी, भारत प्रशासित कश्मीर।
और अब अखबारों की समीक्षा। सर्वप्रिया सांगवान, काफी देर से अखबारों को उलट पलट रही थी, क्या कहते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों की?
आदर्श, सबसे पहले तो एक अच्छी खबर पढ़कर सुनाऊंगी श्रोताओं को, जो उत्तर प्रदेश के कासगंज से आई है। एक दलित लड़का 6 महीने से अपनी शादी के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि उसके गाँव के ठाकुर समुदाय के लोग उसे बारात निकालने के लिए रास्ता देने को तैयार नहीं थे। जब ये लड़का कोर्ट के और सरकारी एजेंसियों के चक्कर लगा रहा था, तो BBC ने भी इस रिपोर्ट को मुख्य तौर पर छापा था। कल 15 जुलाई को इस लड़के संजय जाटव की बारात 350 पुलिस वालों की मौजूदगी में वहां से निकली और आखिरकार शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। लेकिन यह सब तब हुआ जब मीडिया ने इसे मुख्य तौर पर सामने छापा और प्रशासन हरकत में आया
जी।
इसके अलावा एक दिलचस्प खबर हरियाणा की लग रही है, जहां राज्य सरकार ने एक कैंपेन चलाया है कि 6ठी से 12वीं कक्षा के बच्चे पौधे लगाने की अपनी सेल्फी क्लिक करें और उसे मोबाइल ऐप पर अपलोड करेंगे तो उन्हें हर 6 महीने में 50 रुपए मिलेंगे। अभी ऐप के बारे में तो नहीं बताया गया है, लेकिन हरियाणा सरकार सेल्फी अभियानों में काफी सक्रिय है
जी।
टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू छपा है रैमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता वाटर कंजर्वेशनिस्ट राजेंद्र सिंह का। उन्होंने कहा है कि देश की लगभग 70% छोटी नदियां मर चुकी हैं। अगर पानी बचाना है तो लोगों की भागीदारी बढ़ाइए, ना कि कॉन्ट्रैक्टर्स की। आदर्श, एक बहुत ही गंभीर मसला है, और वो भी ऐसे देश में जहां नदियों को माँ कहा जाता आ रहा है लेकिन फिर भी मरने दिया जा रहा है। और ना, भारत टाइम्स में एक लेख भी छपा है कि 1000 करोड़ लगाए जाने के बावजूद गंगा अब भी साफ नहीं है। इसके अलावा एक और हम अब तक सुनते आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात, जो हर महीने प्रसारित होती है। अब आम आदमी पार्टी ने भी रविवार को देश की बात कार्यक्रम लॉन्च किया है। अब ये हर सप्ताह इस कार्यक्रम का आयोजन सभी विधानसभाओं में होगा। पार्टी पदाधिकारियों के मुताबिक इस तरह के संवाद कार्यक्रमों से कार्यकर्ताओं व उनसे सहानुभूति रखने वाले आम लोगों को हर दिन बदलते राष्ट्रीय मसलों के प्रति पार्टी जागरूक करेगी। और अमर उजाला का कहना है कि पार्टी की योजना दरअसल दिल्ली में ऐसे मंझे हुए कार्यकर्ता तैयार करने की है, जिनकी ना सिर्फ दिल्ली के मसले में पकड़ हो, बल्कि देश दुनिया में बदलते सियासी घटनाक्रमों पर भी इनकी बारीक निगाह बनी रहे
जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वप्रिया। पाकिस्तान में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। कुछ ही दिनों में वहां वोटिंग होनी है। कैसा माहौल है वहां, जानने के लिए सुनिए पाकिस्तान से वुसतुल्लाह खान की डायरी।
آج چناؤ سے صرف 9 دن کی دوری پہ پاکستان کے جو حالات ہیں انہیں دیکھ کے ماؤ زیڈونگ کا یہ ایتہاسک وشلیشن یاد آتا ہے کہ آکاش تلے زبردست اتھل پتھل ہے اور پرستھتی اتی اتم ہے۔ جو کل تک ستہ میں تھے آج ان پہ ایک کے بعد ایک پرچے کٹ رہے ہیں۔ جس جس کے پاس بھی مسلم لیگ نواز کا چناؤ ٹکٹ ہے اس پہ اوپر نیچے دائیں بائیں سے دباؤ ہے، ٹکٹ واپس کرو یا دوسری پارٹی میں شامل ہو جاؤ یا پھر آزاد چناؤ لڑو یا فلاں فلاں مقدمے میں سرکاری گواہ بنو۔ ورنہ بتاؤ اتنے ٹھاٹ باٹ سے اب تک کیسے رہ رہے ہو؟ ٹیکس کتنا دیا، کتنا چھپایا، فلاں ٹھیکے میں کتنا کمایا، عدالتوں کی توہین کیوں کی، کار سرکار میں مداخلت کیوں کی، لوگوں کو توڑ پھوڑ پہ کیوں اکسا رہے ہو، نیب، ایف آئی اے اور عدالت کا سامنا کرو یا پھر سامنے کی لانڈری میں جاؤ اور سارے گند سے پاک صاف ہو جاؤ۔ عمران خان کی تحریک انصاف، جسے 2013 کے چناؤ میں پہلی بار قومی اسمبلی کی 32 سیٹیں ملی تھیں، وہ 166 سیٹیں جیتنے والی نواز شریف کی پارٹی پہ الیکشن میں دھاندلی کرنے کے آروپوں پہ دھرنے دیتی رہی اور کرپشن فری پاکستان کے 5 ورش نعرے لگاتی رہی۔ اس بار سوائے عمران خان کے ہر کوئی چیخ رہا ہے کہ 25 جولائی کو الیکشن نہیں سلیکشن ہونے جا رہا ہے، مگر عمران خان کے سمرتھک کہتے ہیں کہ اس بار کوئی دھاندلی نہیں ہوگی۔ ٹی وی چینلوں کو دیکھا جائے تو عمران خان جیت چکے ہیں۔ جو ایک آدھ چینل یہ نہیں کہہ پا رہے ان کی کہیں تصویر غائب ہو رہی ہے تو کہیں آواز۔ عمران خان کہتے ہیں اس وقت اوپر والا ان کے ساتھ ہے، باقی کہہ رہے ہیں اوپر والا ساتھ ہو نہ ہو دھرتی کے خدا ان کے ساتھ ضرور ہیں۔ جب ساری مشینری الیکشن کا رخ موڑنے پہ لگی ہوئی ہے تو آتنکوادی بھی کھل کھیل رہے ہیں۔ صرف ایک ہفتے میں 3 بڑی گھٹنائیں 168 جانیں لے چکی ہیں۔ بلوچستان کے شہر مستونگ میں ایک چناؤ ریلی پہ آتم گھاتک حملے میں 142 لوگ مارے گئے۔ 4 ورش پہلے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پہ حملے میں 150 بچوں اور ٹیچرز کے مارے جانے اور اس کے بعد فوجی آپریشنز میں آتنکواد کی کمر توڑ دینے کے بعد مستونگ کا حملہ سب سے خونی ہے۔ مگر جس دن مستونگ میں لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں میڈیا کے کیمرے لاہور ایئرپورٹ پہ نواز شریف اور مریم نواز کی گرفتاری کور کر رہے تھے۔ اتنی اتھل پتھل اور جوڑ توڑ کے ماحول میں جو بھی 25 جولائی کے بعد سرکار بنائے گا وہ کتنی دیر چل پائے گی اور دیش کو آرتھک، راجنیتک اور ودیشی چیتاونیوں کی دلدل سے کیسے نکال پائے گی، فی الحال یہ سوچنے کا سمے کسی کے پاس نہیں۔ ہر چناؤ میں ووٹ ڈالنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ دیش کا کل آج سے بہتر ہو، مگر 9 دن بعد ووٹر اس دعا کے ساتھ ووٹ ڈالے گا کہ جیسے حالات آج ہیں کم از کم کل اس سے زیادہ خراب نہ ہو۔ اگر چناؤ کا مقصد یہی ہے تو 5-6 ارب روپے کا خرچہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ہاں بھی چناؤ ہوتے ہیں؟
وسط اللہ خان کی ڈائری آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں لکھیے گا ضرور۔
नमस्कार भारत शॉर्ट वेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलो हर्ट्स और मीडियम वेव 1413 किलो हर्ट्स पर।
और अब सुनिए साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। साल 2018 का विंबलडन कल पुरुष एकल वर्ग में 12वीं वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच की खिताबी जीत के साथ समाप्त हो गया। कल खेले गए फाइनल में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन को सीधे सेटों में 6-2, 6-2, 7-6 से हराया। नोवाक जोकोविच की विंबलडन में ये 4थी खिताबी जीत रही। दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन ने इस बार विंबलडन में तब सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर को हरा कर बाहर का रास्ता दिखाया। फेडरर के खिलाफ 5वां और निर्णायक सेट जीतने के लिए उन्हें 13-11 के स्कोर तक संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद सेमीफाइनल भी उनके लिए ऐसा ही रहा। अमरीका के जॉन इस्नर से पार पाने के लिए उन्होंने 26-24 के स्कोर तक अपनी जी जान लगाई और शायद यही कारण फाइनल में उनकी हार का कारण भी बना। थके शरीर के कारण वो जोकोविच के खिलाफ पहले सेट में केवल 21 मिनट टिक सके। दूसरे सेट में भी जोकोविच ने एंडरसन पर कोई रहम नहीं दिखाया और 6-2 से जीत हासिल की। तीसरे सेट में एंडरसन ने वापसी की कोशिश की, लेकिन जोकोविच ने उन्हें क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जैसे मुकाबले दोहराने का कोई मौका नहीं दिया। 7-6 से जीतने के साथ ही तीसरा सेट और इस बार का विंबलडन नोवाक जोकोविच के नाम हो चुका था। और अब समीक्षा, क्या इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम अपने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरी है?
मैच जीतने के माइंडसेट से खेलना, ये उस बारे में नहीं है कि मैं या कोई एक प्लेयर और क्या करता है टूर पे, हम एज ए टीम क्या करते हैं टूर पे, वो हमारे लिए मेन गोल है और हमारा फोकस वही रहेगा।
ये शब्द हैं भारत के कप्तान विराट कोहली के, जो उन्होंने इंग्लैंड रवाना होने से पहले कहे थे। इंग्लैंड पहुंचते ही 2020 मैचों की सीरीज अपने नाम करने के बाद, हालांकि भारतीय टीम 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज के 2 मैचों के बाद 1-1 से बराबरी पर है, जिसका तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। दरअसल इंग्लैंड ने दूसरे मैच में भारत को 86 रन से हराया। अब खेलेंगे तो हार जीत तो होगी ही, लेकिन अगर इस मैच को छोड़ दिया जाए तो इससे पहले खेले गए मैचों में भारत के अलग अलग खिलाड़ी चमके। पहले 2020 मुकाबले में केएल राहुल शतक बनाकर चमके, ये क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप में उनका दूसरा शतक था। अब केएल राहुल का खुद पर भरोसा बढ़ रहा है।
टीम के लिए भी जब अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको मैच जिताने के लिए, अगर आप जिताओगे ओनली देन विल द टीम स्टार्ट बिलीविंग दैट ये प्लेयर भी कर सकता है टीम के लिए, नॉट जस्ट वन और टू प्लेयर्स।
और इसी पहले मैच में कुलदीप यादव ने भी 5 विकेट झटके। इसके बाद पहले एक दिवसीय मैच में तो उन्होंने 6 और दूसरे एक दिवसीय मैच में 3 विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों में खौफ पैदा किया। कुलदीप यादव ने अपनी लय बनाए रखी।
Obviously it's my first tour in England and things are going very well. When I bowl the first tour, I feel like it's gonna be a little bit of turn, so I just stick to one line and length.
इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने पहले तो 2020 और उसके बाद पहले एक दिवसीय मैच में शतक जमाया। उन्हें भारत के युवा खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है, जिसका आधार उन खिलाड़ियों ने खुद बनाया।
चाहे वो कुलदीप हो, चहल, हार्दिक, राहुल, बोलिंग डिपार्टमेंट में बुमराह, ये 5-6 लड़कों ने काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिए लास्ट 1 सालों में। बाहर से जब हम देखते हैं इन लड़कों को परफॉर्म करते हुए तो हमें अच्छा ही लगता है बिल्कुल, क्योंकि नए नए टीम में आकर सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता है।
भरोसा जमाते नए खिलाड़ी, लेकिन पूर्व ऑलराउंडर मदन लाल कुछ और ही कहते हैं।
देखिए टीम हमारी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेस्ट टीम गई है इंग्लैंड और इनका जीतना बड़ा जरूरी है और ये जीतेंगे भी, विश्वास भी है। पर ये जो फीलिंग आ जाती है ना कि विराट कोहली के बाद हमने हथियार डाल दिए, वो बात मेरे को अच्छी नहीं लगी।
विराट कोहली निश्चित रूप से टीम का आधार बिंदु है और जैसे जैसे उनके अलावा दूसरे खिलाड़ी ऐसे ही मैच जिताते रहे तो फिर विराट कोहली अपने उस उद्देश्य में कामयाब हो जाएंगे जिसकी उम्मीद वो करते हैं। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता के साथ खेलने वाली भारत की पीवी सिंधु कल फाइनल में जापान की नोजुमी ओकुहारा से पार नहीं पा सकी और हारकर मायूसी का सामना करने को मजबूर हो गई। चौथी वरीयता हासिल ओकुहारा ने खिताबी मुकाबले में पीवी सिंधु को 50 मिनट तक चले खेल में 21-15, 21-18 से हराया। ये इस साल तीसरा ऐसा अवसर रहा जब फाइनल में खिताबी जीत सिंधु के हाथ से फिसल गई। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और अब विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सर्वप्रिया सांगवान से।
वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल मुकाबला फ्रांस ने जीत लिया है। फ्रांस ने एक रोमांचक मुकाबले में क्रोएशिया को 4-2 से हराया। फ्रांस के 19 साल के केलिन एम्बापे पेले के बाद पहले टीनेजर खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में स्कोर किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज फिनलैंड में बैठक होने जा रही है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि उन्हें इस मुलाकात से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। उनका कहना है कि वो साल 2016 के अमरीकी चुनावों के दौरान कथित रूप से हैकिंग में शामिल 12 रूसी लोगों की बात उठाएंगे। इराक में लोग नौकरी और बेहतर सुविधाओं के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन पिछले एक हफ्ते से चल रहे हैं। दक्षिणी इराक के शहर बसरा में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हवा में फायर किए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने शहर की मुख्य सरकारी इमारत को कब्जे में लेने की कोशिश की। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की राजनीतिक पार्टी के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। यूरोपीय संघ ने कई बार अमेरिका को याचिका दी थी कि ईरान के मामले में जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं यूरोपीय संघ को उसका हिस्सा ना बनाया जाए, लेकिन आखिरकार अमेरिका ने याचिका को खारिज कर दिया है। एक काले व्यक्ति की पुलिस फायरिंग मौत हो जाने के बाद अमेरिका के शिकागो शहर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के संक में इतना ही। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।